सैनिक थे ती जहर है जहर है जहर है
शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम शाश्वत यौगिक खेती इस विषय पर चर्चा करते हैं। खेती तो आप करते ही आए हैं, लेकिन खेती में योग का क्या महत्व है? खेती भी शाश्वत है और हमारा खेती से संबंध भी शाश्वत है। और जब हम शाश्वत यौगिक खेती की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है, हमें अपने सोच पर नियंत्रण करना है, अच्छे विचार करने हैं, अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार बनाना है, बुरी चीजों से बचना है। और बुरी चीजों का जब जिक्र आता है तो एक गुस्सा, इसका भी जिक्र आता है। गुस्सा कुछ लोग कहते हैं कि किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन गुस्से के लिए कहा गया कि क्रोध तो ऐसी अग्नि है कि जिस घर में हो वहां पर घड़ों का पानी भी सूख जाता है। क्रोध क्या एक बुराई है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, आज के कार्यक्रम में क्रोध पर चर्चा करेंगे। और क्रोध पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद हैं चंडीगढ़ से पधारे ब्रह्मा कुमार ओमकार चंद भाई। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ओम शांति।
ओम शांति। ओमकार चंद भाई पिछले 21 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान के संपर्क में वे जब से आए तब से उन्होंने मोटिवेशन को, यानी कि खुद भी उत्साह में रहना, उमंग में रहना और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना, इसे अपना मिशन बना लिया जीवन का। वर्तमान में भाई जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, किसान पुत्र ही हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारा सौभाग्य आज हमसे बात करने के लिए हमारे बीच में। भाई जी, गुस्सा हम देखते हैं जगह जगह दिखाई देता है, तनाव चिड़चिड़ापन बड़ा आम हो गया है, गुस्से को बुराई कहा जाता है। हम जब खेती की बात करते हैं तो शाश्वत यौगिक खेती में हमारे संकल्पों का, हम जो सोच रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, उसी का प्रभाव हमारी फसल पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, इस पर हम चर्चा करते आए। लेकिन बुराइयों से जब छुटकारे की बात आती है तो सबसे बड़ी कॉमन सी बुराई हो गई है गुस्सा। ये गुस्सा है क्या, कहां से उत्पन्न होता है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे।
बहुत ही सही प्रश्न आपने पूछा कि गुस्सा क्या है। एक संत से भी ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने एक सुंदर सा जवाब दिया कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देना ही गुस्सा है। यानी गलती दूसरा कर रहा है, गलतियां वो कर रहा है और सजा हम खुद को दे रहे हैं। इससे भी एक अच्छी चीज गुस्से के बारे में कहा गया है कि गुस्सा एक आग है। जैसा कि आपने भी कहा कि जिस घर में गुस्सा होता है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। पानी के मटके तो दूर, आदमी का खून भी सूख जाता है। ये ऐसी आग है जिसमें आदमी खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गुस्से में आकर आदमी, कहा जाता है कि तांबे की तरह लाल हो जाता है उसका चेहरा, इतना वो परेशान, खुद भी परेशान, दूसरा भी परेशान। लोग कहते हैं कि भाई इसे ठंडा पानी पिलाओ। और गुस्सा ऐसी चीज है जो आज हम छोटी छोटी बातों में, सवेरे से शाम तक बिना मतलब की बातों में हम इरिटेट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर ऐसी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बात मत पूछो। मैं एक गांव में गया, मेरे एक किसान मित्र थे, उनके साथ कोई बात हो गई तो उन्हें इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, कहने लगे आज मैं इस व्यक्ति को सीधा कर दूंगा, आज तो मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, ये समझता क्या है, मैं इसके होश उड़ा दूंगा, इसका आज मैं इलाज करके ही छोड़ूंगा, मैं इसे सेट कर दूंगा। मैं देखता रहा, थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति खुद ही अपसेट हो गया, दूसरे को सेट करने के चक्कर में खुद अपसेट हो गया, खुद दुखी हो गया, खुद डिस्टर्ब हो गया।
हाँ जी,
तो इसलिए कहा गया कि गुस्सा एक बहुत बड़ी आग है जो खुद को भी खत्म करती है, दूसरे को भी खत्म करती है। और ये छोटी छोटी बातें, हम खेतों में गए, उस व्यक्ति ने हमारे साथ ये नुकसान कर दिया, आज लाइट चली गई, इन्हीं से लोग गुस्से में आ जाते हैं। घर में आए, ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं मिला, रोटी जली हुई मिल गई तो गुस्सा आ गया। और गुस्से का रिजल्ट ये है, मैंने लाखों घर देखे जो जलकर राख हो गए, देश वीरान हो जाते हैं। इसलिए गुस्सा, जैसा आपने कहा कि गुस्सा एक आग भी है। तीसरी चीज कि जो गुस्सा है वो एक टेम्परेरी मैडनेस है, ये हमें थोड़ी देर के लिए पागलपन हमारे अंदर ले आती है, जोश में आकर हम होश गुमा बैठते हैं, हमें भले बुरे का पता नहीं चलता, कौन सी बात कह रहे हैं कौन सी नहीं कहनी चाहिए। और आप कभी जेल में जाइए, कभी पागलखाने में जाइए, ज्यादातर लोग आपको इस गुस्से के कारण ही वहां पर मिले होंगे।
बिल्कुल सही।
बहुत से लोग मैंने देखा कि गुस्से को दोस्त समझ लेते हैं और उसका बड़ा आदर सत्कार करते हैं जैसे कोई बहुत अच्छी चीज हो। तो गुस्सा कोई अच्छी चीज नहीं है, गुस्सा एक बीमारी है, ये एक बीमार मानसिकता है और एक बुरी आदत है, एक नेगेटिव साइड ऑफ आवर पर्सनैलिटी है, डार्क साइड ऑफ आवर पर्सनैलिटी है, जिसे आप कहें कि ये एक नेगेटिव एनर्जी है
जी।
और जो पांच मेन विकार गीता में भी कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनमें से नंबर दो पे क्रोध का ही नंबर आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है जिसे लोग आज अपना साथी समझकर, अपना दोस्त समझकर, उसे अपने जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ मानकर चल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है
जी। पर ये गुस्सा जो आ रहा है या ये जो उत्पन्न हो रहा है, ये जो उत्तेजना एकदम से आ रही है, ये है क्या, ये किन कारणों से हो रही है जिसे हम गुस्से का नाम देते हैं या क्रोध का नाम देते हैं, जैसे मतलब आपने भी कहा कि दूसरे नंबर का विकार है, तो ये विकार क्यों आया, ये क्या है?
इसके बारे में सबसे बड़ा कारण जो रिसर्च हुई कि गुस्सा क्यों आता है, तो पाया गया कि लगभग 30% गुस्सा, जब हमारी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं होता, हमारी अपेक्षाओं के अनुसार लोग काम नहीं करते, तो हमें गुस्सा आता है। गीता में भी इसका वर्णन है कि जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसे गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि के भ्रष्ट होने से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गुस्सा का ये सबसे बड़ा कारण है कि जब हम ये अपेक्षा करते हैं कि लोग मेरे अनुसार कार्य करें, मैं जो कहूं वो ठीक, बाकी सब मेरे अकॉर्डिंग, माई वे इज द हाईवे, थिंग्स शुड गो माई वे, जो मैं कहता हूं वही होना चाहिए। और आप जानते हैं कि हर चीज हमारे अनुसार नहीं हो सकती, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति के संस्कार अलग हैं, हर व्यक्ति की योग्यताएं और क्षमताएं अलग हैं, सब लोग हमारे अनुसार कार्य कभी भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में वैरायटी है और वैरायटी ही यहां की ब्यूटी है, सब एक जैसे हो ही नहीं सकते। लेकिन हम ज्यादातर वक्त यही इच्छा रखते हैं कि जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए। इसलिए गुस्से का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो ये है। बाकी दूसरे भी अनेक गुस्से के कारण हैं, उनके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं।
मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी इच्छा के अनुरूप यदि कोई काम नहीं हुआ तो यहां से हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है,
गुस्सा आना शुरू,
यहां से हमें तकलीफ होती है कि भाई इसने मेरा कहा नहीं माना, मैं ही सही हूं। अपने आप को सही मान लेना और दूसरे को गलत मान लेना,
गलत मान लेना,
ये 30% आपने जो आंकड़ा बताया ये कारण है। बाकी 70% कारण छोटे छोटे अलग हैं, लोगों के मुताबिक हैं, या फिर इसमें भी कोई और मेजोरिटी कारण निकल करके आता
है? बाकी जो कारण हैं उनमें हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी को किस कारण गुस्सा आता है, किसी को दूसरे कारण गुस्सा आता है, हो सकता है उसको उस जगह गुस्सा नहीं आता हो लेकिन परिस्थितियां कुछ और किस्म की हो तो उसे गुस्सा आता है। लेकिन उनमें भी जो बड़ा एक मुख्य रूप और है वो है अभिमान, हमारा अहंकार, जो हर व्यक्ति ये लेके चलता है कि मैं बड़ा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं मोटा ताजा हूं, ये दुबला पतला है, ये अनपढ़ है, इसको ये क्या समझता है अपने आप को, तो उसको दबाने के लिए अहंकार की जहां भावना आती है, अभिमान वाला या तो अपना अपमान कराता है या दूसरे का अपमान कराता है, उसे कोई पिन भी चुभा देगा उसे गुस्सा आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो अभिमान है वो गुस्से का बड़ा भाई है, जब अभिमान को चोट पहुंचती है तो गुस्सा आना बहुत सहज हो जाता है। और भी अनेक कारण है गुस्से आने के। कई लोगों को क्या होता है, ड्राइविंग कर रहे हैं मान लो, गाड़ी चला रहे हैं, वहां पर कईयों को ज्यादा गुस्सा आता है, कईयों को जेलसी के कारण, ईर्ष्यावश के कारण गुस्सा आता है, कईयों को अपनी फ्यूचर की इनसिक्योरिटी रहती है, उन्हें भय रहता है कि कहीं ये व्यक्ति मेरा हक ना छीन ले, उनको वहां गुस्सा आता है। कई लोगों के मौलिक अधिकार जब छीन लिए जाते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। मान लो किसी आदमी को कमरे में बंद कर दिया जाए और उसकी आजादी छीन ली जाए, उसे बोलने ना दिया जाए, उसे गुस्सा वहां आ सकता है। कई तरह के अंदर के या बाहर के कारण रहते ही हैं। किसी के साथ धोखा हो जाए, कोई उसके अपने साथी उसका साथ छोड़ दे, उसके साथ वादा खिलाफी हो जाए, कोई उसके कहने पर काम ना करे, सहयोग ना दे, तो ऐसे तमाम कारण हैं। कई बार हमारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो हमें पीछा नहीं छोड़ती, वो भी गुस्सा दिला देती हैं। हर आदमी के अलग अलग कारण होते हैं
जी। ओंकार भाई, हम चर्चा कर रहे हैं गुस्से के ऊपर, आपने बताया गुस्सा क्या है, गुस्सा एक बुराई है, ये बात तो निकल करके आ रही है, लेकिन जब आप सर्वे की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो आपने कहा कि 30% लोगों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उनकी इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ। फिर जो दूसरी बड़ी बीमारी है, दूसरा बड़ा विकार है, अहंकार या अभिमान, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, अपने अभिमान को बचाए रखने के लिए भी इंसान गुस्सा कर रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो मगर गुस्सा हो रहा है तो बुराई हो रही है, और उससे जुड़ी और भी बुराइयां हो रही हैं। फिर एक बुराई है और बुराई फैल रही है। गुस्सा करना सही कितना है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई, जैसे आपने जिक्र किया कि मौलिक अधिकार किसी का छीन लिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए, उसकी आजादी छीन ली जाए, तो उसका गुस्सा आना स्वाभाविक है। अब ये स्वभाव है, गुस्सा आया, मगर उस वक्त उस भाव में स्थित होना, गुस्से के भाव में स्थित होना ठीक है या नहीं, गुस्सा करना है या नहीं करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है।
आपने बहुत सही बात कही कि कई जगह हमें लगता है कि यहां गुस्सा आना स्वाभाविक है। ये हमारी कुछ भ्रांतियां हैं, हमें कई बार लगता है शॉर्टकट में हम चले जाते हैं, छोटे छोटे फायदों के लिए गुस्सा करने लग जाते हैं कि मुझे इस, मैं गुस्सा करूंगा तो लोग मेरा कहना मानेंगे, मैं मनचाहा काम लोगों से करा लूंगा, घर में अनुशासन बना रहेगा, बच्चों को डांटूंगा तो बच्चे होमवर्क टाइम पे करेंगे, खेतों में गया मजदूरों को डांट दिया, रोब डाल दिया, मजदूर काम करने लग जाएंगे। ये एक भ्रांतियां हैं जो हमें लगता है कि शायद ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति शांत रहना है। अगर गुस्सा करना हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति होती तो हम दिन के 24 घंटे ही गुस्सा कर लेते। स्वाभाविक तो वो होती है जो सदा रहती हो, हम सदा के लिए शांति में बैठ सकते हैं, लेकिन सदा के लिए कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते। जैसे पानी है, पानी अपना टेम्परेचर, उसका एक तापमान है, उसको वो रखता है, उसको अगर हम गर्म करें, आग उसके नीचे रखें, वो गर्म हो जाएगा, लेकिन वो गर्म कितनी देर तक रहेगा, कुछ देर तक, जब तक आग नीचे है, बाद में उसे अपने नॉर्मल तापमान में, सामान्य तापमान में आना पड़ता है। उसी तरह हम गुस्सा भी ज्यादा देर नहीं कर सकते, गुस्सा भी थोड़ी देर किया जा सकता है। इसलिए ये कहना कि ये हमारी नेचुरल नेचर है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये गलत है। हाँ, कई बार हमें लगता है कि गुस्सा के कारण बड़े मजबूत हैं, ऐसी परिस्थिति में गुस्सा करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में गुस्सा किए बिना काम नहीं चल सकता, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, एक लाइन में इसका आंसर है कि क्रोध के कारण से क्रोध के परिणाम ज्यादा वेदनामय होते हैं। क्रोध का चाहे कितने बड़े कारण हो, लेकिन जब इसका परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, वो उससे भी ज्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं। एक बार एक किसान भाई था, उसकी एक पत्नी थी और घर में एक बेटा था। तो बेटा बड़ा गुस्सैल था, बड़ा तूफान मचाता था, शरारती था, तो वो जब कुछ करता था तो माँ उसको डांटती थी या मारती थी। इसी कारण माँ और पिताजी के बीच में झगड़ा रहता था। जब वो बेटे को कुछ कहती थी, बेटा, पिताजी चाहते थे कि इसे कुछ ना कहा जाए। एक बार यूं हुआ कि बच्चे ने कुछ शरारत की और मां ने जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। पिताजी से यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने बच्चे का खेलने वाला बैट उठाया और अपनी पत्नी के सिर पे मार डाला। वो पत्नी वहीं गिर गई, उसे ब्रेन हैमरेज हो गया, कुछ दिनों बाद मर भी गई। पुलिस ने पिताजी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, मां दुनिया छोड़ के चली गई और बेटा अनाथ हो गया। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा कारण था, उस कारण उसने गुस्सा किया और उस कारण से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। हालांकि उसका उद्देश्य कोई मारने का नहीं था। उसने बाद में पत्रकारों से जेल में बात की, उसने कहा कि मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन एक सेकंड के गुस्से ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए गुस्सा चाहे किसी भी कारण हो, गुस्सा हमेशा ही हमें नुकसान देता है, उसके परिणाम हमेशा ही खतरनाक होते हैं।
जी जी।
गुस्से के ऊपर एक और रिसर्च हुई जिसमें यह पता किया गया कि जब गुस्सा व्यक्ति को आता है 72 घंटे तक उसका प्रभाव उसके शरीर में रहता है। शरीर में जो उसका खून चल रहा है और जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर 72 घंटे तक गुस्से का प्रभाव रहता है। अब हम देख लीजिए कि हम 72 घंटे तो दूर, 24 घंटे में कितनी बार गुस्सा करते हैं। 72 घंटे तक वही प्रदूषित, वही हाई बीपी या हाई स्पीड वाला खून हमारे शरीर में चलता रहता है, तो हमारे शरीर के एक एक अंग को कितना प्रभाव डालता होगा उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा काम तब कर सकता है जब हम उसे मोटिवेट करें, और मोटिवेट करने का एक ही तरीका है, उसे प्यार से व्यवहार करना। गुस्से से अगर वो थोड़ा बहुत काम करता भी है तो वो काम डर के कारण करता है, और आज मनोविज्ञान कहता है कि जब हम डर की परिस्थिति में काम करते हैं वो काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। मान लो हमने लोगों को डांट दिया, कुछ कह दिया, वो हमसे छोटे हैं, वो हमारे सामने तो बोलेंगे नहीं, उन्होंने सुन लिया और थोड़ा बहुत हमारे कहने पे काम कर भी दिया, लेकिन जो वो व्यक्ति इंसल्ट फील करेगा, अपमान महसूस करेगा, तो वो भी अंदर अंदर ही कुड़ेगा, अंदर ही अंदर हमारे प्रति दुर्भावना रखेगा। और आप जानते हैं एक छोटा सा मशीन में एक छोटी सी चीज भी अगर खराब हो जाए और वो भी साथ ना दे आयन मौके पे, तो मशीन नहीं चल सकती। आज वो छोटा व्यक्ति काम कर रहा है, मन ही मन सोचता है कि मेरा वक्त आने दो, मैं इसके रास्ते में रोड़ा जूर अटकाऊंगा। वो हमें सहयोग दिल से नहीं देगा और कहीं ना कहीं हमारे लिए कठिनाई पैदा करेगा। इसलिए फायदे जरूर हैं, लेकिन बहुत क्षण भंगर फायदे हैं, बहुत क्षणिक फायदे हैं
और शायद भ्रम वाले फायदे हैं।
हमें लगता है लेकिन वैसा होता नहीं। मान लो हमने घर में बच्चों को कहा कि डांट दिया कि पढ़ाई करो, अब वो डांट के क्या पढ़ाई करेंगे? डांट के वो किताब खोल लेंगे, जब घर वाले देखेंगे तो किताब खुली मिलेगी, और जैसे ही घर वाले जाएंगे तो किताब के अंदर भी कोई और किताब हो सकती है। जब तक हम उन्हें समझाएंगे नहीं, जब तक उसके महत्व नहीं बताएंगे, तब तक वो काम सही तरीके से हो नहीं सकता। और मान लो छोटी प्राप्ति हो भी गई, लेकिन एक छोटी प्राप्ति के खातर एक बहुत बड़ी प्राप्ति को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये समझदारी नहीं है। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, एक नौजवान पकड़ा गया, उसे अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया और जेल में उससे बात की कि भाई हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम हमारा साथी बन जाओ, हमें सहयोग देना शुरू कर दो। उन्हें कई तरह के लालच दिए गए, ये भी कहा गया कि तुम्हारी बूढ़ी माँ गांव में रो रही है, उसके खातर तुम हमारा साथ देना शुरू कर दो। लेकिन वो नौजवान घबराया नहीं, डरा नहीं, छोटी प्राप्ति के लालच में नहीं आया। उसने कहा कि अगर अपनी मां के आंसुओं को देखकर मैंने अपने देश के प्रति कर्तव्य को भुला दिया तो ये मेरी मां का अपमान होगा। हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर चढ़ गया। उसी तरह एक छोटी सी प्राप्ति की लोग हमारा कहना मानेंगे, लोगों के बीच में हमारी धौंस जम जाएगी, रो पड़ जाएगा, हम एक बहुत बड़ी प्राप्ति जो शांति की है, आनंद की है, प्रेम की है, अगर उसको छोड़ देते हैं तो ये परमात्मा का अपमान है।
क्या बात।
तो हम दूसरों से काम करा सकते हैं लेकिन मोटिवेट करके, और मोटिवेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जिसके भी आप संबंध संपर्क में आए, जिससे भी आप बात करें, उसके व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में से कोई ना कोई गुण ढूंढ लीजिए और सबके आगे उसे उजागर कीजिए, वो व्यक्ति आपका दोस्त बनेगा और आपके सारे कार्य करेगा। प्रशंसा एक ऐसी ताकत है जिससे आप बड़े से बड़े काम करा सकते हैं, लोग कहते हैं खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है, इसलिए जी भरकर दूसरों के गुण उजागर कीजिए। अगर किसी की कमी बतानी है तो प्राइवेटली उसके बताइए, अगर किसी के अच्छे गुण बताने हैं तो सबके सामने पब्लिक में उसे बताइए, वो व्यक्ति आपको सहयोग देगा और आपके कहने पे सारे कार्य करेगा। इसे मोटिवेशन कहते हैं।
सबसे अच्छी बात आपने जो कही वो ये थी कि जितना बड़ा कारण है उससे कहीं ज्यादा बड़ा उसका परिणाम तकलीफ देह हो सकता है आगे जाकर के। ओंकार भाई आपसे जब चर्चा कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इच्छाएं पूरी नहीं हुई, या सहन शक्ति का भी आपने जिक्र किया कि सहन नहीं कर पाए तो भी गुस्सा आ गया। क्या किया जाए उन छोटी छोटी बातों में जो दिन प्रतिदिन हमारे सामने आती हैं, क्योंकि गुस्सा स्वभाव में तो आ गया है, तभी तो हमने उसे स्वाभाविक बोलना शुरू कर दिया है। तो पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि स्वभाव में कैसे आ गया।
स्वभाव में आने के पीछे भी एक बात है, जब हमारी आत्मा इस सृष्टि पे आई थी तो उसके स्वभाव में गुस्सा नहीं था। आत्मा के गुण शांति के हैं, प्रेम के हैं, आनंद के हैं, खुशी के हैं। लेकिन धीरे धीरे इस दुनिया में पार्ट बजाते बजाते, कर्म करते करते, लोगों के संबंध संपर्क में आते आते, इस नकारात्मक प्रवृत्ति को, इस बुरी आदत को हमने धीरे धीरे सीख लिया, और सीखते सीखते ये हमारे स्वभाव में आ गई, जिसे आज हम कहते हैं कि आज हम इसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन ये एक अक्वायर्ड नेचर है जो हमने यहीं आके गेन की, यहीं आके सीखी। जैसे कोई बुराई सीखी जाती है, ऐसे ये बुराई हमने यहीं आके जन्म बाई जन्म धीरे धीरे करते करते सीख ली। इसलिए हमें लगने लग गया कि ये बहुत जरूरी चीज है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन असली में गुस्सा हमारी नेचर हो ही नहीं सकती। हमारी नेचर शांति है, तभी तो हम शांति पसंद करते हैं। किसी से भी आप पूछ लीजिए, क्या उसके साथ किसी से जब हम पूछें कि आपके साथ कोई गुस्से से बात करे तो आपको अच्छा लगेगा, वो कहेगा कभी अच्छा नहीं लगेगा। जब हम चाहते हैं कि हमसे कोई दुर्व्यवहार ना करे, ऊंची आवाज में ना बोले, तो क्यों ना हम भी प्यार से बोले, हम भी बिना गुस्से के बोले। जब हम चाहते हैं प्यार, हमें कोई बात प्यार से समझाई जाए, तो दूसरे भी तो यही चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं वही हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वही हमारी ओरिजिनल नेचर होती है
जी।
कोई भी व्यक्ति गुस्सा ना चाहता है ना सुनना चाहता है गुस्से में बात
जी, जी।
इसलिए इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि गुस्सा हमारी स्वाभाविक वृत्ति नहीं है।
कितनी अच्छी बात कही आपने कि गुस्सा जिसको मैंने अपना स्वभाव मान लिया है वो वास्तव में मेरा स्वभाव है नहीं। कहीं ना कहीं जन्म और मरण की जो चक्र में मैं आत्मा आई हूं, मैंने कहीं ना कहीं इस बुराई को अपनाया है, बार बार गुस्सा किया है, जिसकी वजह से वो मेरा संस्कार बन गया है। और आज मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, मेरा स्वभाव क्रोध का हो गया है। यहां तक कि हम में से कुछ लोगों ने तो अपने व्यक्तित्व को ही गुस्सैल बना लिया है कि भाई गुस्सा दिखाएंगे, गुस्से वाली पर्सनैलिटी रहेगी तो शायद हमारे काम हो जाएंगे। लेकिन गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है, बल्कि हमारा स्वभाव शांति है। ये जो कुछ विचार, ये जो कुछ शब्द ओंकार भाई ने हमारे सामने रखे, हमें इन विचारों को, इन शब्दों को स्मृति में रखना है, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। वास्तव में हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वही हमें दूसरों को भी देने का नियम पालन करना है। गुस्सा जिसे बहुत बड़ी बुराई कहा गया, जिस बुराई से बचने के लिए कहा गया, आज हमने इस पर चर्चा की। इसी विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। आज हम ओंकार भाई का धन्यवाद करते हैं कि वो स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ओम शांति।
आज के कार्यक्रम में हमने जाना गुस्से के बारे में, गुस्से पर चर्चा की। गुस्से पर और भी अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।